नमस्कार भारत, मंगलवार 6 अक्टूबर, मैं हूं वंदना। नेटो ने रूस से दो टूक शब्दों में कहा, सीरियाई विपक्षी गुटों और नागरिकों पर बंद करें हमले। जर्मन चांसलर आज जाएंगी बेंगलुरु, क्या भारत खरा उतर पाया है जर्मन उम्मीदों पर?
काम चल रहा है, हो सकता है कि जर्मन चाहते हैं कि हम और तेजी से काम करें और हम इतनी तेजी से नहीं कर पाए कोई चीज।
गोमांस पाबंदी पर राजनीति गरमाई, आजम खान ने कहा होगा कुछ नहीं पर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र को पत्र।
अपनी बात को पहुंचाने और एक मजबूर कौम अपनी मजबूरी का इजहार करने के सिवा और कुछ नहीं।
भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच में भारतीय दर्शकों ने फेंकी बोतलें। होंगी और भी खबरें पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। नेटो ने रूस को चेतावनी दी है कि वो सीरिया में सरकार के विरोधियों और नागरिकों पर हवाई हमले बंद कर दे। नेटो के अनुसार रूस खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है, जबकि उसे उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं रूस का कहना है कि वो IS गुट पर ही हमला कर रहा है। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर नेटो के आरोपों का जवाब नहीं दिया है। फेसबुक ने कहा है कि वह अफ्रीका में अंतरिक्ष के जरिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। कंपनी का कहना है कि उसने फ्रांस की एक कंपनी यूटेलसेट के साथ इस संबंध में करार किया है, जो अगले वर्ष अंतरिक्ष में एक उपग्रह भेजेंगे। इसकी मदद से अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में मौजूद लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। फेसबुक के प्रमुख मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि AMOS-6 नामक उपग्रह अभी तैयार किया जा रहा है, जो अंतरिक्ष में अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्से में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दो नए राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण की घोषणा की है। महासागरों को बचाने के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। चिली में आयोजित इस सम्मेलन में वीडियो के जरिए ओबामा ने अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये एक अभ्यारण मिशिगन झील और दूसरा मैरीलैंड राज्य के पोटोमैक नदी के नज़दीक बनेगा। उन्होंने कहा,
These actions will protect waters of historic and natural importance. And in the coming months, I will look for opportunities to...
हमारी इस मेहनत से ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के जल की रक्षा हो सकेगी और आने वाले महीनों में मैं कोशिश करूंगा कि और भी अधिक पानी की रक्षा कर सकूं। अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ महासागरों और पृथ्वी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं दुनिया भर के बच्चों को एक ऐसे ग्रह पर नहीं छोड़कर जा सकता जिसकी मरम्मत ही ना हो सके। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। इराक में पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि एक सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम 63 लोग मारे गए हैं। एक बड़ा धमाका दियाला प्रांत में शिया बहुल कस्बे खालिस में हुआ, जहाँ कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। एक और धमाका अलजुबैर कस्बे में हुआ, जो बसरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। तीसरे बम धमाके में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। AP के अनुसार राजधानी बगदाद में हुए धमाके में कम से कम 25 लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में पुलिस के अनुसार एक जुलूस के कारण पैदा हुए तनाव के सिलसिले में 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साधु संतों की प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए हिंसक झड़प के बाद वाराणसी के जिन 4 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले इलाके में कर्फ्यू लगा था, वो 2 घंटे के बाद हटा दिया गया। BBC समाचार।
BBC हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत उस खबर से जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है, सीरिया और रूस। 28 देशों के समूह नेटो ने रूस को आगाह किया है कि वो सीरिया में विपक्षी गुटों और नागरिकों पर हवाई हमले बंद कर दे। रूस पिछले 6 दिनों से सीरिया में हवाई हमले कर रहा है। रूस का दावा है कि उसने चरमपंथी गुट IS को निशाना बनाया है। क्या है पूरा माजरा, समझा रहे हैं अमल चौधरी।
नाटो के अनुसार रूस खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है, जबकि उसे उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं रूस का कहना है कि वो IS गुट पर ही हमला कर रहा है। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर नाटो के आरोपों का कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमले में कोई भी नागरिक नहीं मारा गया है। हालांकि हमले के स्थान पर जो सबूत मिले हैं उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वहां नागरिकों की मौत हुई है। सीरिया के रक्षा मंत्री का कहना है कि सोमवार को रूसी वायुसेना ने 15 हमले किए जिसमें से वो 10 लक्ष्यों को भेदने में कामयाब रहे। उधर तुर्की ने कहा है कि उसने रूस के एक लड़ाकू विमान को रोका जो सीरियाई सीमा के पास तुर्की के हवाई क्षेत्र में घुस आया था। तुर्की के विदेश मंत्री फेरेदुन सिनरलियोग्लू ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को फोन पर इस बारे में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने रूस को चेतावनी दी है कि अगर फिर से तुर्की के वायु क्षेत्र का उल्लंघन हुआ तो रूस को इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं अमरीकी विदेश मंत्री जॉन करी ने भी तुर्की का समर्थन किया। उन्होंने कहा,
वी आर ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट इट बिकॉज़ इट इज प्रिसाइसली द काइंड ऑफ थिंग दैट
ये जो भी हुआ उससे हम बहुत चिंतित हैं। तुर्की ने जो भी किया वो उसके अधिकार क्षेत्र में था और वो चाहते तो रूस के विमान को गिरा भी सकते थे और ऐसी ही स्थिति के बारे में हम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी। वहीं नाटो का भी कहना है कि रूस ने जो किया वो अस्वीकार्य है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा,
I just met with the foreign minister of Turkey to discuss the recent military actions of the Russian Federation.
सीरिया और उसके आसपास के क्षेत्र में रूस की कार्रवाई पर मैंने तुर्की के विदेश मंत्री से चर्चा की है। साथ ही जिस तरह से उनका विमान उनके हवाई क्षेत्र में घुस आया था उस पर भी हमारी बात हुई। मैंने उन्हें बताया कि नाटो पूरी तरह से तुर्की की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस जो भी कर रहा है उससे क्षेत्र में किसी भी तरह से सुरक्षा और स्थिरता में इजाफा नहीं हो रहा, नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। हालांकि रूस का कहना है कि खराब मौसम की वजह से उनका विमान तुर्की के हवाई क्षेत्र में कुछ सेकंड के लिए ही आया था। रूस ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो आईएस गुट पर ही हमले कर रहा है। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर नाटो के आरोपों का जवाब नहीं दिया है।
उधर तुर्की ने इस दूसरी बार रूसी राजदूत को तलब किया है और दूसरी दफा उसके हवाई क्षेत्र में घुसने की शिकायत की है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और आज वो बेंगलुरु जाएंगी जहां प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ होंगे। वे नैसकॉम के बिजनेस फोरम में शामिल होंगी। सोमवार को उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 18 समझौतों पर दस्तखत हुए। इनमें 14 समझौते सरकारों और 4 समझौते उद्योग जगत के बीच हुए। इन समझौतों से ये छवि बन रही है कि दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन कारोबार जगत भारत में सुधारों को लेकर बहुत खुश नहीं दिख रहा। मर्कल की ये यात्रा अब तक कैसी रही और दोनों देशों को इससे क्या फायदा हुआ, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने बात की जर्मनी में भारत के पूर्व राजदूत किशन राणा से।
मैं बिजनेस की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक तो और बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये शायद पहली बार है कि भारत और कोई भी महान विदेश पावर के साथ ये कैबिनेट रूप में इंटर गवर्नमेंट डिस्कशंस हो रहे हैं। ये तीसरी बार हो रहा है। आपके हर 2 साल ये मुलाकात होती है। सबसे पहली मुलाकात भारत में हुई थी, फिर दूसरी बार मनमोहन सिंह जी बर्लिन गए थे 2013 में, और फिर इस बार मर्कल अपने साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर लेके आई। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि 6 महान क्षेत्र है, इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी अन्य मिनिस्ट्री, एजुकेशन, उनके साथ बहुत ही गहराई से प्रश्न का, पॉसिबिलिटीज का डिस्कशन होता है, निर्णय लिया जाता है। ये जो बिजनेस डेलीगेशन आया है वो थोड़े बहुत निराश है, हो सकता है, क्योंकि देखिए जब एक देश में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसके साथ आप ट्रेड रिलेशन बनाना चाहे, तो तरह तरह के प्रश्न आते हैं। अब भारत और जर्मनी के बीच में ट्रेड एक्सचेंजेस करीब 20 बिलियन यूरोस के मूल्य की है, वो इतनी बड़ी रकम नहीं। हमारी आशा थी कि ये इसमें काफी और बढ़ावा आए, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। हो भी सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इतना मजबूत नहीं है, इसमें इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं आया है, लेकिन पिछले 16 महीनों में मोदी सरकार ने काफी प्रयास किया है और कई ऐसे सवाल है, घरेलू सवाल है, जिस पर वो आगे नहीं बढ़ सका। एक उदाहरण दे सकता हूँ, तो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि तेज गति से ट्रांसफॉर्मेशन भारत के रूल्स है, भारत के रेगुलेशन है, उसमें किया। ये सब देखते हुए ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि काम चल रहा है। तो हो सकता है कि जर्मन चाहते हैं कि हम और तेजी से काम करें और हम इतनी तेजी से नहीं कर पाए कोई चीज।
अंगेला मर्केल जब भारत से वापस जाएंगी तो उनके पास क्या होगा और क्या वो भारत को दे करके जाएंगी?
जब 1500 जर्मन कंपनीज इंडिया में मौजूद है, इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में उनके बिजनेस चलते हैं, उनके प्रोडक्शन चलता है, उनकी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एरिया में काफी नए जो समझौते का निर्णय किया गया है और खास करके स्किलिंग मतलब स्किल डेवलपमेंट, जर्मनी की ड्यूअल सिस्टम ऑफ जो ब्लू कॉलर वर्कर की ट्रेनिंग के लिए है वो पूरे विश्व में जानी मानी है। इंग्लैंड जैसे देशों ने भी जर्मनी से सीखा है, पता नहीं वो आज कबूल करना चाहे या नहीं, लेकिन जर्मनी इसका पायनियर है। तो मैं जब जर्मनी में सफीर था मैंने काफी कोशिश करी कि हम किस तरह जर्मनी की ड्यूअल सिस्टम को अपने देश में अपने कंडीशंस देखते हुए उससे कुछ हम सीख सकें। उस टाइम तो मैं सफल नहीं हुआ क्योंकि 93-95 में अपने देश में स्किल डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था, ये हकीकत है। अब स्किल डेवलपमेंट की बात हम करने लगे हैं तो इस क्षेत्र में भी हम जर्मनी से काफी कुछ सीख सकते हैं।
तो काफी कुछ सीख सकते हैं जर्मनी से, ये कहना था जर्मनी में भारत के पूर्व राजदूत किशन राणा का। और जर्मन चांसलर का आज भारत में आखिरी लेकिन अहम दिन है। उधर गोमांस पर उठा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अब गोमांस पर पाबंदी के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की कोशिश में हैं। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव गोमांस पर दिए अपने बयान पर सफाई देते फिर रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे की चर्चा हुई। पूरा ब्यौरा वात्सल्य राय से।
दादरी में कथित रूप से गोमांस खाने की अफवाह को लेकर हुई अखलाक अहमद की हत्या से नाराज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने गोमांस पर पाबंदी के मसले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने की बात कही है। उनका कहना है कि अब संयुक्त राष्ट्र ही इस बारे में कोई फैसला कर सकता है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा,
हमारे देश की विदेश मंत्री साहिबा ने जो भाषण दिया है वो मानवता की इंतहा है, शराफत और मोहब्बत की इंतहा है। और उस वक्त जब वो यूनाइटेड नेशंस में अपना वो तारीखी भाषण दे रही थी उस वक्त दादरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लहू बह रहा था, मरने वाले की लाश पड़ी थी और बीमार अस्पताल में दाखिल था जो आज भी है।
अपने ही वतन में कानून की पासदारी नहीं हो रही है, जब अपनों से ही इंसाफ नहीं मिल रहा है तो दुनिया वाले क्या दे सकेंगे यह हम खूब जानते हैं। लेकिन सिर्फ अपनी बात को पहुंचाने और एक मजबूर कौम अपनी मजबूरी का इजहार करने के सिवा और कुछ नहीं।
उधर बिहार के चुनावी माहौल में भी गोमांस की चर्चा बार बार हो रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर के जरिए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य में गोमांस पर रोक लगेगी। दो दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा था कि हिंदू भी गोमांस खाते हैं। हालांकि बाद में वो इस बयान पर सफाई देते रहे कि बीफ का मतलब गोमांस नहीं होता।
जो कोई बोला है मेरे नाम सही शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है।
गोमांस पर पाबंदी का मसला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में गोमांस पर रोक को सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू बेंच ने 2 हफ्ते पहले गोमांस पर रोक को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। इसी हाई कोर्ट की श्रीनगर बेंच ने इसके बाद इस आदेश को रद्द करने का हुक्म सुनाया। एक ही मामले पर 2 अलग-अलग आदेश मिलने के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 3 जजों की बेंच के जरिए इस मसले को सुलझाने का आदेश दिया है।
तो गोमांस की पाबंदी पर लगातार राजनीति गरमा रही है। रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। उधर बनारस में कल एक विरोध प्रदर्शन के उग्र होने के कारण काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया और कुछ देर के लिए शहर के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। ये रैली 22 सितंबर को हुए लाठीचार्ज के विरोध में थी, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद साधु गणेश प्रतिमा का विसर्जन गंगा में करना चाह रहे थे और पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने शहर के SSP आकाश कुलहरी से पूछा कि ये हंगामा शुरू कैसे हुआ।
जुलूस जा रहा था, उसी दौरान कोई दो सांड आपस में भिड़ गए थे, तो उसी को लेकर के वहाँ भगदड़ मच गई कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जो कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी जुलूस में, तो वो लेकर के जो है उन्होंने पुलिस पे जो है अटैक कर दिया, पुलिस वालों को मारना पीटना चालू कर दिया। पुलिस ने रिएक्शन करके वहां से उनको खदेड़ा। इसी दौरान जो है तकरीबन 6 से 7 वाहन जो अराजक तत्व थे उन्होंने फूंक दिए हैं, उसी में से कुछ 7-8 पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है और यही पूरा डैमेज हुआ है। और इसके अलावा अभी स्थिति सामान्य है, पुलिस थोड़ा जो मोबाइल होकर के शहर में घूम रही है।
जो कर्फ्यू लगाई गई है वो किन इलाकों में लगाई गई?
वाली बात नहीं है, कर्फ्यू कोई नहीं लगा,
कोई कर्फ्यू नहीं लगाई गई है।
नहीं नहीं, उस समय लगाया गया था, मेरे ख्याल से लगाया होगा, मेरे को ध्यान, वो तो DM की पावर होती है, पर अभी स्थिति सामान्य है, कर्फ्यू जैसी कोई बात नहीं है।
तो अब क्या सामान्य लोग आने जाने लगे हैं?
लोग जो घाट से आ रहे हैं, जो बेचारे साउथ इंडियंस हैं, बंगाल से लोग आए हैं, वो तो जा ही रहे हैं। अभी मेरे सामने से 5 लोग जा रहे हैं बस्ता लेकर के, बैग लेके।
ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये कौन लोग थे?
अब इसी में कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग चले गए थे, उसमें हिंदू युवा वाहिनी के भी थे, शिवसेना के भी थे, काशी सुरक्षा सेना के भी थे, कई सारे लोग थे, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, अजय राय और ये सारे लोग भी थे।
तो ये किस चीज का विरोध कर रहे थे ये लोग?
ये जो है दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन जो है गंगा में किया जाए, उसको लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन था। और एक पहले जो है पुलिस ने पहले एक गणेश मूर्ति विसर्जन में कुछ किया था मूर्ति विसर्जन, तो उसको भी लेकर के विरोध था।
उस पर क्या रोक लगा दी गई है?
हाँ, रोक लगी हुई है, हाईकोर्ट ने उसमें आदेश पारित कर रखा है, हाईकोर्ट का आदेश उसमें हो रखा है कि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करी जाए मूर्ति विसर्जन के लिए।
तो आपने किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया?
अभी 30 के करीब में व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।
तो एहतियात के तौर पर आज कई इलाकों में बनारस में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बात बिहार की हो जाए, जहां चुनाव से पहले नेताओं के दौरे हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने भी साल 2011 में बिहार का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान वो पटना से सटे दानापुर की जमसौत मुसहरी में भी गए थे। उनकी इस यात्रा में रानी नाम की बच्ची चर्चा में आई थी, जिसे गोद में लेकर गेट्स दंपति ने फोटो खिंचवाई थी। बिल गेट्स की फाउंडेशन बिहार में स्वास्थ्य के मसले पर काम कर रही है। गेट्स दंपति की जमसौत यात्रा के 4 साल बाद रानी और मुसहरी का क्या हाल है, ये जानने पहुंची सीटू तिवारी।
आपका ये लंग तो कहा हो रहा है, कुछ ताक दिला ने, कुछ नहीं ताका, खाली सबसे हंसा दिला कि बड़का आदमी आया, अब कुछ नहीं ताका।
रुंती देवी का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा है, आस पड़ोस वाले उसे ताने मारते हैं। रुंती रानी की माँ है, रानी यानी वो बच्ची जिसको लेकर गेट्स दंपत्ति ने तस्वीर खिंचवाई थी। रानी अब 4 साल की हो गई है, वो कभी कभार गांव के खस्ताहाल आंगनबाड़ी केंद्र में चली जाती है। उसके बड़े भाई का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश को आजकल बुखार आने लगा है, उसे शहर के डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कराने को कहा है, लेकिन परिवार के पास पैसा नहीं है। रानी के पिता साजन मांझी मजदूरी करते हैं, तो रुंती खेत मजदूर है। इन लोगों को कभी कभार ही काम मिलता है, रुंती बताती हैं।
रानी के गोद लिया है तो इका ये ओती गर्मी आज खराब हो गया, तो इतने मनी पैसा कमाते हैं, जाते हैं खेत बधारे ने काम करने, तो वे ला के लड़का के जियाइया हाँ खेत ने जाते हैं, प्याज रोपे तो धान रोपे, निकवनी करे, सोहनी करे, ये सब करे जाते हैं। आ हमने के का अथी सर्विस दे रहा है।
बिल और मेलिंडा गेट्स दंपत्ति 2011 में जमसौत मुसहरी में आए थे। दरअसल बिल गेट्स फाउंडेशन और बिहार सरकार के बीच 2010 में स्वास्थ्य सुधार को लेकर एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों मसलन मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं आदि के बीच पूरे बिहार में काम होना था। गाँव वाले कहते हैं कि गेट्स के आने से बदलाव की उम्मीद जगी थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ का स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़ा है, तो 2 कमरों में ही कक्षा 5 तक का सरकारी स्कूल चलाया जा रहा है। गांव की फुलवंती देवी स्कूल का हाल बता रही हैं, तो वीरेंद्र कुमार स्वास्थ्य उपकेंद्र का।
काहे की पढ़ाई देवे न कर हूँ, अपने न खीसा करित रहा आई, अपन अथी महीना अपन पास करित रहा, तने जने तने लेकिन भाग रहा, लेकिन के चेत करवा तो तू भाग जाते लेकिन
दर्द थे काम करने धक्का लग गया, उधर मांग मलहम मंथ लगे के चलते नहीं मिला, दवाई नहीं मिलता है मैडम। खाली सिर दर्द हो फायदा नहीं करता। एक बढ़िया दवाई खाएंगे ना तो आप बुखार लगे ऊपर चढ़ गया, दिमाग पर चढ़ गया, तो हम दवाई नहीं खाते हैं। दवा लगाए तो खाएंगे मैडम।
बिल गेट्स फाउंडेशन और बिहार सरकार के स्वास्थ्य को लेकर हुए समझौते को लागू करने में तकनीकी सहयोग केयर इंडिया दे रहा है। केयर के तकनीकी निदेशक श्रीधर शिकारतिया का दावा है कि सुधार तो हुआ है, हालांकि वो ये भी स्वीकारते हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
इन्फेक्शन कंट्रोल है वो बहुत पुअर था, हाइजीन, बेसिक हाइजीन पुअर था, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इतना नहीं। ये जो पार्टनरशिप है BMGF और केयर द्वारा जो बिहार सरकार के साथ की जो पार्टनरशिप, उससे इतना हुआ है कि ये हर एक प्रैक्टिकली हर एक पहलू में आपको दिखेगा कि क्वालिटी ऑफ केयर काफी सुधर गया है।
दिलचस्प है कि तकरीबन एक साल पहले जमसौत मुसहरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी आए थे। यहाँ उन्होंने शौचालय बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन मुसहरी से जीतन राम मांझी का वायदा भी अब तक अधूरा ही है। सीटू तिवारी, BBC, जमसौत, दानापुर।
और अब नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो आज रह सकती हैं सुर्खियों में।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 6 अक्टूबर को कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। वो यहां पर गन्ना किसानों से मुलाकात करेंगे। आधार कार्ड के उपयोग पर जारी रस्साकशी के बीच सेबी और RBI की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। RBI और सेबी ने कोर्ट से आधार कार्ड का उपयोग ID प्रूफ के रूप में करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इन संस्थाओं की दलील है कि आधार के उपयोग से ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे की धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTTI में विवाद को लेकर छात्रों और केंद्र सरकार के बीच आज फिर से बातचीत होगी। छात्र संस्थान के चेयरमैन गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट आज अपने कई ऐसे डिवाइस लॉन्च करने वाला है जो उसके सबसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 पर चलेंगे। माना जा रहा है कि न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम में कंपनी 14 इंच की स्क्रीन वाला सरफेस प्रो टैबलेट और कई लैपटॉप लॉन्च करेगी। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2006 में जंतर मंतर पर आमरण अनशन के जरिए खुद को मारने की कोशिश की थी। इसी मामले में दिल्ली की एक अदालत आज इरोम शर्मिला का बयान दर्ज करेगी।
और अब बारी है खेल की खबरों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल कटक में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान भारत को 17 गेंद शेष रहते 6 विकेट से करारी मात दी। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए केवल 93 रनों का लक्ष्य था, जो उसने JP ड्यूबिनी के नाबाद 30 और डेविड मिलर के नाबाद 10 रन की मदद से 17.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी भारतीय टीम 17.2 ओवर में ही केवल 92 रनों पर ढेर हो गई। रोहित शर्मा और सुरेश रैना ने 22-22 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के LB मोरकर ने 12 रन देकर 3, क्रिस मॉरिस ने 16 रन देकर 2 और इमरान ताहिर ने भी 24 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही 3 मैचों की इस 2020 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। उधर पाकिस्तान ने हरारे में खेले गए तीसरे और आखिरी 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से मात दी। पाकिस्तान की जीत में बिलाल आसिफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जिम्बाब्वे के 5 विकेट केवल 25 रन देकर लिए और उसके बाद 38 रनों की पारी भी खेली। इस मुकाबले में पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 34 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं आज से दोहा में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है, जो अगले साल रियो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए टिकट भी दिलाएगी। भारत के भी 6 मुक्केबाज इस विश्व चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाएंगे। इनमें 49 किलो भार वर्ग में L देवेंद्र सिंह, 52 किलो में मदन लाल, 56 किलो में शिव थापा, 64 किलो में मनोज कुमार, 75 किलो में विकास कृष्ण और 91 किलो से अधिक भार वर्ग में सतीश कुमार शामिल हैं।
तो जैसा आपने सुना खेल समाचारों में कि कल भारत क्रिकेट मैच हार गया, लेकिन साथ ही दर्शकों की वजह से काफी आलोचना भी हुई। दरअसल वहां जो दर्शक थे उन्होंने मैच के बीच में बाधा डाली और मैदान पर बोतलें फेंकी। सोशल मीडिया पर रात भर दुनिया भर से लोग इसकी आलोचना करते रहे और मोहनलाल जी मौजूद है स्टूडियो में, सोशल मीडिया का एक तरह से लेखा जोखा लेकर क्या कह रहे हैं लोग?
वरना बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने की प्रतिक्रियाएं दी हैं ट्विटर पर। जो पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन है वो कहते हैं कि कटक में बहुत ही खराब दृश्य देखने को मिले। भारत में बहुत सारे क्रिकेट मैदान हैं, लोगों को सजा यही मिलनी चाहिए कि कुछ सालों तक कटक में अंतर्राष्ट्रीय मैच न होने दिए जाएं, कटक में T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच ना हो।
जी, अगले साल होना है भारत में।
बिल्कुल, ये हैं पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन। पत्रकार शेखर गुप्ता जो है वो ट्वीट करते हैं, ब्रिटिश हुड़दंग करने वाले गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाते थे और कटक पर 5 साल का प्रतिबंध लगना चाहिए।
जी।
रविंद्र जडेजा हैं जो कि उनका पैरोडी अकाउंट से ट्वीट करते हैं, @SirJadeja ने अपनी बात कुछ यूं रखी है कि क्या विरोधाभास है कि सीरीज का नाम गांधी मंडेला के नाम पर रखा गया है जो कि शांति के नाम पर जाने जाते हैं।
ये बहुत ही वाकई विरोधाभासी चीज है।
वहीं @Nadeem7863 हैंडल से एक यूजर लिखते हैं कि लोगों को शर्म आनी चाहिए, मैच देखने का भला ये कौन सा तरीका है। इसी तरह से एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं कि 15 अगस्त को भारत माता की जय चिल्लाना बेमानी है अगर आप दुनिया के सामने इसी तरह का बर्ताव करते हैं तो। तन्वी शर्मा है, ये लिखती हैं @TanviSharma211 हैंडल से लिखती हैं, कुछ हो या ना हो एक बात तो साफ है कि कुछ भारतीय दर्शकों ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से कुछ सीखा नहीं है।
जी, बल्कि भारत से बाहर भी जो लोग हैं वो भी आलोचना कर रहे हैं।
इसी तरह की एक टिप्पणी है @YamTeamIK और ये लिखते हैं @ICC India के लिए, यानी कि भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है अंतर्राष्ट्रीय, उसके लिए कहते हैं शर्मनाक दिन है दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की ओर से ग्रो अप इंडिया।
जी, संदेश दिया है, संदेश ये शायद पाकिस्तान के यूजर हैं। और अभी भी मैं पढ़ रही थी कि जो संजय मांजरेकर ने भी कहा कि बहुत ही खराब दिन, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अब बारी हो चुकी है अखबारों की समीक्षा की। अमल
जी, आज के खबरों की बात करें तो लगभग सभी में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, दादरी कांड और वाराणसी में जो हिंसा हुई है उसकी खबरें छाई हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत और जर्मनी के बीच जो 18 समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर की खबर को लिया है। और वहीं मर्केल ने भारत को जो $1.5 अरब कीमत की जो सौर ऊर्जा देने का वादा किया उसे पायनियर ने अपना शीर्षक बनाया है। अगर इसके अलावा अगर हम अन्य खबरों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक और खबर दी है जिसका शीर्षक है बेंगलुरु में मौलवियों ने कथित IS से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। खबर का लबोल हुआ भी है कि करीब 150 मौलवी हैं जिन्होंने WhatsApp पर मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है यहाँ पे उन्होंने, और WhatsApp पर अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसमें वो चर्चा करते हैं कि युवाओं को इस कट्टरता से बचाने के लिए क्या किया जाए, उसे अमल में लाने के लिए वो योजनाएँ बनाते हैं, इस तरह का उनका एक ग्रुप है। और वहीं इसी खबर इसी अखबार में ही जम्मू कश्मीर में मारे गए 4 जवानों की भी खबर है। और मोबाइल ऐप के जरिए चलने वाली कंपनियों के लिए अब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा, इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है। वहीं एक और इंटरेस्टिंग सी खबर है कि पेप्सिको की जो CEO हैं इंदिरा नूई, उनकी बहन चंद्रिका टंडन और उनके पति ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को लगभग 10 करोड़ डॉलर का दान दिया है। और दैनिक भास्कर
भारत के बाहर जो
जी जी हाँ बिल्कुल 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 वहीं दैनिक भास्कर ने एक फोटो प्रकाशित की है जिसमें बीफ बैन पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों को लड़ते हुए दिखाया गया है। और एक और तस्वीर है दैनिक भास्कर की में ही है जिसका शीर्षक है कि नेपाल एवरेस्ट की 17,598 फीट की ऊंचाई पर 42 किलोमीटर लंबी मैराथन। जी बिल्कुल, ये हाँ इस खबर के बारे में भास्कर लिखता है कि ये मैराथन हर साल मई में एवरेस्ट को फतह करने की याद में आयोजित कराई जाती है। और इस तस्वीर में बहुत अच्छा सा देखा जा सकता है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद पर्वतारोही मतलब कैसे हंसते मुस्कुराते इसमें आगे बढ़ रहे। वंदना
जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों पर सुबह सुबह नजर डालने के लिए। और अब सुन लेते हैं प्रमुख विश्व समाचार।
BBC समाचार। नाटो ने रूस को चेतावनी दी है कि वो सीरिया में सरकार के विरोधियों और नागरिकों पर हवाई हमले बंद कर दे। नाटो के अनुसार रूस खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा है। फेसबुक ने कहा है कि वह अफ्रीका में अंतरिक्ष के जरिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। कंपनी का कहना है कि उसने फ्रांस की एक कंपनी यूटेलसेट के साथ इस संबंध में करार किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2 नए राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण्य की घोषणा की है। महासागरों को बचाने के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इराक में पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम 63 लोग मारे गए हैं। एक बड़ा धमाका दियाला प्रांत में शिया बहुल कस्बे खालिस में हुआ जहाँ कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस के अनुसार एक जुलूस के कारण पैदा तनाव के सिलसिले में 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बीबीसी समाचार।
जी तो अब स्टूडियो की जो घड़ी है वो इशारा कर रही है कि कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ चुका है। आज स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। अब सभी साथियों के साथ मुझे वंदना को दीजिए अनुमति।